नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नार ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जॉन याब्लोंस्की की पुस्तक लॉज ऑफ यूएक्स डिजिटल उत्पादों और सेवाओं के अनुभव डिजाइन पर केंद्रित एक व्यावहारिक मनोविज्ञान आधारित मार्गदर्शिका है। इसका मूल तर्क है कि सुंदर इंटरफेस पर्याप्त नहीं होते, क्योंकि उपयोगकर्ता किसी उत्पाद को अपनी सीमित ध्यान क्षमता, स्मृति, आदतों, अपेक्षाओं और भावनाओं के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसलिए डिजाइन का काम लोगों को नई व्यवस्था सीखने के लिए बाध्य करना नहीं, बल्कि उनके स्वाभाविक मानसिक मॉडलों के अनुरूप अनुभव बनाना है। पुस्तक विभिन्न स्थापित सिद्धांतों जैसे जैकब का नियम, फिट्स का नियम, हिक का नियम, मिलर का नियम, पोस्टल का नियम, और पी के नियम को डिजिटल इंटरफेस के संदर्भ में समझाती है। याब्लोंस्की परिचित ऐप्स और उत्पाद अनुभवों के उदाहरणों के माध्यम से सिद्धांतों को व्यवहार में उतारते हैं। साथ ही वे चेतावनी देते हैं कि मनोविज्ञान का उपयोग उपयोगकर्ता की सहायता के लिए होना चाहिए, उसकी कमजोरियों का अनुचित लाभ उठाने के लिए नहीं। यह पुस्तक यूएक्स को केवल दृश्य सज्जा नहीं, बल्कि मानव व्यवहार को समझने वाला अनुशासन मानती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, जैकब का नियम परिचित पैटर्न और सार्थक नवाचार के बीच संतुलन सिखाता है। जैकब का नियम कहता है कि लोग अपना अधिकांश डिजिटल समय उन उत्पादों पर बिताते हैं जिन्हें वे पहले से जानते हैं। परिणाम स्वरूप वे किसी नए ऐप या वेबसाइट से भी परिचित ढंग से काम करने की अपेक्षा करते हैं। याब्लोंस्की के लिए इसका अर्थ अंधानुकरण नहीं है, बल्कि उपयोगकर्ता की सीखी हुई अपेक्षाओं का सम्मान करना है। उदाहरण के लिए, नेविगेशन, खोज, कार्ट, लॉगिन और प्राथमिक कार्रवाई जैसे तत्वों को पूरी तरह असामान्य स्थान या रूप देने पर व्यक्ति को पहले इंटरफेस समझना पड़ता है, फिर अपना काम करना पड़ता है। यह अतिरिक्त मानसिक प्रयास उपयोगिता को घटाता है। पुस्तक बताती है कि प्रचलित डिजाइन पैटर्न इसलिए मूल्यवान है क्योंकि वे उपयोगकर्ता की पूर्व सीख को नए संदर्भ में स्थानांतरित होने देते हैं। फिर भी परिचितता हर स्थिति में सर्वोच्च नियम नहीं है। जब किसी नए पैटर्न से वास्तविक समस्या हल होती हो, तब परिवर्तन उचित हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बदलाव का लाभ स्पष्ट हो, संकेत पर्याप्त हो और वास्तविक उपयोगकर्ताओं के साथ परीक्षण किया जाए। इस तरह जैकब का नियम डिजाइनर को ब्रांड की अलग पहचान और कार्यात्मक अनुमाननीयता के बीच विवेकपूर्ण संतुलन बनाने में मदद करता है। दूसरा, फिट्स और हिक के नियम निर्णय तथा क्रिया की लागत को कम करने का ढांचा देते हैं। पुस्तक में फिट्स का नियम और हिक का नियम इंटरफेस की दो अलग लेकिन जुड़ी हुई कठिनाइयों को स्पष्ट करते हैं। फिट्स का नियम बताता है कि किसी लक्ष्य तक पहुंचने का समय उसके आकार और उससे दूरी पर निर्भर करता है। छोटे, दूर स्थित या एक दूसरे से सटे नियंत्रणों को चुनना कठिन होता है, विशेषकर मोबाइल स्क्रीन पर। इसलिए अक्सर उपयोग होने वाले बटन पर्याप्त बड़े, आसानी से पहुंचने योग्य और गलती से दबने वाले विकल्पों से अलग होने चाहिए। यह केवल दृश्य व्यवस्था का प्रश्न नहीं, बल्कि मोटर नियंत्रण, पहुंच योग्यता और त्रुटि रोकथाम का प्रश्न है। हिक का नियम निर्णय लेने के पक्ष को देखता है। विकल्प बढ़ने पर निर्णय में लगने वाला समय और अनिश्चितता बढ़ सकती है। इसका समाधान हर जगह विकल्प हटाना नहीं है। डिजाइनर विकल्पों को अर्थपूर्ण समूहों में बांट सकता है, क्रमिक खुलासा कर सकता है, लोकप्रिय या अनुशंसित विकल्प को स्पष्ट कर सकता है और उपयोगकर्ता के कार्य के अनुसार जानकारी दिखा सकता है। याब्लोंस्की का व्यापक संकेत यह है कि अच्छी यूएक्स उपयोगकर्ता की इच्छा स्वतंत्रता घटाने के बजाय निर्णय और क्रिया के अनावश्यक बोझ को घटाती है। इन दोनों नियमों को साथ लागू करने से व्यक्ति को सही विकल्प पहचानना और उसे सफलतापूर्वक चुनना आसान होता है। तीसरा, स्मृति। ध्यान और सूचना भार को समझे बिना सरल इंटरफेस संभव नहीं है। लॉज ऑफ यूएक्स इस धारणा को चुनौती देती है कि अधिक जानकारी या अधिक सुविधाएं स्वतः बेहतर अनुभव बनाती है। मानव कार्यशील स्मृति और ध्यान सीमित है, इसलिए एक इंटरफेस जो एक साथ बहुत से विकल्प, निर्देश, सूचनाएं और दृश्य संकेत प्रस्तुत करता है, उपयोगकर्ता को थका सकता है। मिलर के नियम से जुड़ी चर्चा का व्यावहारिक निष्कर्ष यह है कि डिजाइनर को सामग्री को छोटे, अर्थपूर्ण खंडों में संगठित करना चाहिए। हालांकि किसी निश्चित संख्या को हर परिस्थिति का कठोर नियम मानना उचित नहीं होगा, क्योंकि जानकारी की जटिलता और उपयोगकर्ता का संदर्भ भी मायने रखते हैं। पुस्तक पहचान को स्मरण से आसान मानने वाले सिद्धांत की दिशा में भी संकेत करती है। उपयोगकर्ता से कमांड, प्रक्रिया या पिछला चयन याद रखने की अपेक्षा करने के बजाय प्रासंगिक विकल्प और स्थिति दिखाई जानी चाहिए। स्पष्ट लेबल, परिचित आइकन के साथ पाठ, दृश्य पदानुक्रम, चरणबद्ध फॉर्म और उचित डिफॉल्ट इस उद्देश्य को पूरा करते हैं। ध्यान का प्रबंधन भी उतना ही आवश्यक है। वॉन रेस्टॉफ प्रभाव दिखाता है कि अलग दिखने वाला तत्व याद रह सकता है, पर हर चीज को अलग दिखाने पर कोई भी चीज प्रमुख नहीं रहती। इसलिए प्रमुख कार्रवाई, चेतावनी या महत्वपूर्ण स्थिति को सीमित और उद्देश्यपूर्ण दृश्य भिन्नता मिलनी चाहिए। सरलता का अर्थ खाली स्क्रीन नहीं, बल्कि मानसिक संसाधनों का जिम्मेदार संगठन है। चौथा, सौंदर्य। प्रतिक्रिया, गति और अनुभव की स्मृति उपयोगकर्ता के समग्र मूल्यांकन को आकार देती है। याब्लोन्स्की दिखाते हैं कि उपयोगकर्ता किसी डिजिटल उत्पाद का मूल्यांकन केवल कार्य पूरा होने के आधार पर नहीं करते। सौंदर्य उपयोगिता प्रभाव के अनुसार आकर्षक और सुसंगत डिजाइन लोगों को अधिक उपयोगी या भरोसेमंद लग सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि दृश्य सुंदरता खराब कार्यक्षमता की भरपाई कर सकती है, बल्कि साफ टाइपोग्राफी, संतुलित लेआउट, पठनीयता और सुसंगत दृश्य भाषा आरंभिक भरोसा और प्रयोग की इच्छा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद वास्तविक उपयोगिता को उस अपेक्षा पर खरा उतरना पड़ता है। डोहर्टी थ्रेशहोल्ड से जुड़ी चर्चा प्रतिक्रिया की गति पर ध्यान दिलाती है। यदि सिस्टम उपयोगकर्ता की क्रिया पर शीघ्र प्रतिक्रिया देता है तो संवाद की लय बनी रहती है। धीमी प्रक्रिया में प्रगति संकेत, स्थिति संदेश या तात्कालिक दृश्य प्रतिक्रिया अनिश्चितता कम कर सकते हैं। पीक एंड नियम एक और महत्वपूर्ण परत जोड़ता है। लोग अनुभव को हर क्षण के औसत से नहीं, बल्कि उसके तीव्र क्षणों और अंत के आधार पर अधिक याद रख सकते हैं। इसलिए भुगतान, त्रुटि सुधार, पुष्टि, सहायता और कार्यपूर्णता जैसे क्षणों को विशेष सावधानी से डिजाइन करना चाहिए। पुस्तक का निष्कर्ष यह है कि अनुभव का भावनात्मक पक्ष सजावटी परत नहीं, उपयोगकर्ता के भरोसे, याद और वापसी की संभावना का व्यावहारिक घटक है। अंत में, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का नैतिक उपयोग और उपयोगकर्ता परीक्षण डिजाइन की अनिवार्य सीमाएं हैं। पुस्तक मनोविज्ञान को डिजाइनर के लिए प्रभावशाली उपकरण मानती है, लेकिन उसे उपयोगकर्ता को नियंत्रित करने की तकनीक के रूप में प्रस्तुत नहीं करती। ध्यान आकर्षित करना, विकल्पों को प्राथमिकता देना, तात्कालिकता दिखाना या आदतों के अनुरूप पैटर्न बनाना उपयोगी हो सकता है, पर इन्हीं उपायों से लोगों को अनचाहे निर्णयों की ओर धकेला भी जा सकता है। याब्लोन्स्की की नैतिक दृष्टिकोण में डिजाइनर को यह पूछना चाहिए कि किसी पैटर्न से लाभ किसे हो रहा है, उपयोगकर्ता के पास वास्तविक विकल्प है या नहीं, और क्या इंटरफेस महत्वपूर्ण जानकारी छिपाकर सहमति हासिल कर रहा है। विशेष रूप से सदस्यता, गोपनीयता, खरीदारी और डेटा साझाकरण जैसे संदर्भों में स्पष्ट भाषा, समझने योग्य विकल्प और आसान वापसी आवश्यक है। साथ ही पुस्तक के नियम तैयार उत्तरों की सूची नहीं है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संभावित व्यवहार समझने का आधार देते हैं, लेकिन वे उपयोगकर्ता अनुसंधान, उपयोगिता परीक्षण, पहुंच योग्यता समीक्षा और संदर्भ की समझ का विकल्प नहीं बनते। एक ही सिद्धांत अलग आयु, संस्कृति, उपकरण, कार्य और जोखिम वाले संदर्भों में अलग परिणाम दे सकता है। इसलिए इन नियमों का सर्वोत्तम उपयोग परिकल्पना बनाने में है। डिजाइनर नियम के आधार पर निर्णय प्रस्तावित करे, वास्तविक लोगों के व्यवहार से उसकी जांच करे और प्रमाण मिलने पर उसे सुधारे। यही पुस्तक को केवल पैटर्न संग्रह से अधिक जिम्मेदार डिजाइन ढांचा बनाता है। निष्कर्ष में, लॉज ऑफ यूएक्स उन यूएक्स और यूआई डिजाइनरों, उत्पाद प्रबंधकों, शोधकर्ताओं, डेवलपर्स और विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जिन्हें डिजिटल अनुभवों के पीछे के तर्क को अधिक स्पष्टता से समझना है। यह उन लोगों के लिए भी प्रासंगिक है जो उत्पाद संबंधी निर्णय लेते हैं, लेकिन मनोविज्ञान की औपचारिक पृष्ठभूमि नहीं रखते। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह डिजाइन समीक्षा और टीम चर्चा की भाषा बेहतर बनाती है। केवल यह कहने के बजाय कि कोई स्क्रीन जटिल या असुविधाजनक लगती है, पाठक विकल्पों की संख्या, लक्ष्य के आकार, उपयोगकर्ता की स्मृति, प्रतिक्रिया गति, परिचित पैटर्न और भावनात्मक प्रभाव के आधार पर कारण स्पष्ट कर सकता है। यह ढांचा बेहतर परिकल्पनाएं बनाने और परीक्षण के सही प्रश्न चुनने में मदद करता है। समान विषय की कई पुस्तकों की तुलना में इसकी विशिष्टता संक्षिप्तता, स्पष्ट संगठन और सिद्धांतों को सीधे डिजिटल उत्पादों से जोड़ने में है। यह व्यापक मनोविज्ञान की पाठ्य पुस्तक नहीं है, न ही हर डिजाइन समस्या का निश्चित नुस्खा देती है। इसकी शक्ति चयनित सिद्धांतों को याद रखने योग्य, लागू करने योग्य और नैतिक प्रश्नों से जुड़ा बनाने में है। अनुभवी पेशेवर इसे त्वरित संदर्भ की तरह उपयोग कर सकते हैं, जबकि नए पाठक इसे डिजाइन पैटर्न के पीछे छिपे कारणों की बुनियाद के रूप में पढ़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, पुस्तक डिजाइन को उपयोगकर्ता के व्यवहार के प्रति विनम्र बनाती है। अच्छा अनुभव तब बनता है जब उत्पाद की व्यवस्था लोगों की क्षमताओं, सीमाओं और लक्ष्यों के अनुकूल हो, न कि जब लोगों से डिजाइनर की व्यवस्था के अनुकूल होने की अपेक्षा की जाए। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जॉन याब्लोन्स्की, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।